नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मई यानी आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वाराणसी भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी का गढ़ है। उन्होंने दो बार 2014 और 2019 के लिए लोकसभा चुनाव में सीट जीती। कांग्रेस ने वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को खड़ा किया है। पीएम मोदी के नामांकन में शामिल होने के लिए काशी में दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री व सांसद विधायक सभी नामांकन में शामिल रहे। वाराणसी की लोकसभा सीट पर मतदान सातवें चरण में होगा। अब तक लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 20, 25 मई और 1 जून को 3 और चरण होने हैं। बीजेपी ने प्रस्तावकों के नामों में जातीय समीकरण को साधने का काम किया है। 4 प्रस्तावकों में 1 ब्राह्मण, 2 ओबीसी समाज से और 1 दलित वर्ग से हैं। प्रधानमंत्री के प्रस्तावकों पर बीते 15 दिन से चर्चा चल रही है और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले 50 लोगों के नामों की एक लिस्ट बनाई गई थी, उसके बाद इनमें से कुल 18 नामों को छांटा गया। इन नामों पर पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के साथ चर्चा की थी। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अदालत में मौजूद रहे। जस्टिस हीमा कोहली और असादुद्दीन अमानुल्ला की बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद के झूठे विज्ञापन मामले में आज सुनवाई की। बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलेगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। इसके साथ ही IMA अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी माफ़ी को भी ठुकरा दिया। जस्टिस हीमा कोहली और असादुद्दीन अमानुल्ला की बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद से पूछा कि जिन दवाओं के लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है, उनको दुकान पर बेचने से रोकने और बाजार से वापस लेने को लेकर उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने पतंजलि को इसको लेकर एक हलफनामा दायर करने को कहा। पतंजलि की तरफ से जवाब देते हुए वकील बलबीर सिंह ने कहा कि हमने प्रोडक्ट्स की बिक्री को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। जस्टिस अमानुल्ला ने रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि आपके क्लाइंट को कुछ साल पहले एम्स जाना पड़ा था एक हार्ट अटैक के चलते। SG मेहता ने कहा कि बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स आयुर्वेदिक दवाइयों पर भरोसा करते हैं। इस पर जस्टिस अमानुल्ला ने कहा कि बाबा रामदेव पर लोगों की आस्था है, उन्हें जनता को कम नहीं आंकना चाहिए, लोग वाकई उनकी बात सुनते हैं। वहीं जस्टिस कोहली ने रामदेव से कहा कि योग में आपका और आपकी टीम का बड़ा योगदान है, लेकिन पतंजलि के प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो एक अलग मसला है। सुनवाई के बाद बाबा रामदेव ने कोर्ट से निकलते वक्त पत्रकारों से कहा कि धैर्य रखो। बाबा ने ये बात तब कही जब उनसे कहा गया कि आपको कोर्ट ने रियायत दे दी है। जस्टिस कोहली ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से एफिडेविट के बारे में पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोकन को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने भी वही किया जो दूसरे पक्ष ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जानते थे कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने काउच पर बैठकर कोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, आप इस मामले में पक्ष हैं, उसके बाद भी हम आपके हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत में मौजूद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष ने अपने इंटरव्यू पर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफ़ी मांगी। कोर्ट ने आगे कहा कि आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जिसके 3,50,000 डॉक्टर सदस्य हैं, आप लोगों पर अपनी कैसी छाप छोड़ना चाहते हैं, आपने पब्लिक में माफ़ीनामा क्यों नहीं मांगी, आपने पेपर में माफ़ीनामा क्यों नहीं छपवाया, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको जवाब देना होगा, आपने 2 हफ्ते में कुछ नहीं किया, आपने जो इंटरव्यू दिया उसके बाद क्या किया, हम आपसे जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष को कहा ये हमें बेहद चौंकाने वाला लगा है, आपने जो लंबित मामले में कहा जबकि आप पक्ष थे, आप देश के नागरिक हैं, क्या देश में जज अपने फैसले के लिए क्रिटिसिज्म नहीं सहते, लेकिन हम कुछ नहीं कहते क्योंकि हमारे में अहंकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष के माफीनामे को ठुकराया, कहा हम संतुष्ट नहीं हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।